समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। जी हां, गीतकार गुलजार की लिखी हैं पंक्तियां आज का सच बयां करती हैं। किताबों से अच्छा भला कोई आपका दोस्त हो सकता है? नमस्कार, आज अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस है, जिसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, जो आजकल मोबाइल किंडल्स ने ले लिया है, और इससे उनका जो पाठन है किताबें पढ़ने का, पुस्तक पढ़ने का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आपका स्वागत है कार्यक्रम परिक्रमा में। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, क्षेत्रीय संवाददाताओं से रूबरू होंगे, इसके अलावा खेल जगत और आर्थिक जगत की भी खबरें होंगी, बहुत कुछ रहेगा। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
Hello, Priyanka. You mentioned the books, and I'd like to add here that a book is a man's best friend. With a book, you are never entirely friendless, and it will never let you down, and it never forsakes you. You know, and rather you gain a lot out of books.
बिल्कुल सही कहा।
And hello and good day, everybody. You are tuned to Parikram on 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is my co-host Priyanka Arora. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह को संबोधित करते हुए नागरिक देवो भव के मंत्र के अनुरूप नागरिक केंद्रित प्रशासन पर बल दिया।
Government fully exempts customs duty on 40 critical petrochemical products till 30th of June amid West Asia conflict.
देश का रक्षा निर्यात पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंचा।
Supreme Court criticizes West Bengal administration over judicial officers being held hostage during SIR drive in Malda, allows Election Commission to seek central probe, asks poll panel to deploy central forces.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू।
And in IPL cricket, host Kolkata Knight Riders to face Sunrisers Hyderabad this evening. Yes, and it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Autism Awareness Day. Today, April 2nd, is World Autism Awareness Day, a day established in 2007 by the United Nations General Assembly. And Priyanka, over the years, this day has become more than just a date. It is a global movement dedicated to dignity, inclusion, and equal rights for autistic individuals everywhere. And this year's theme is Autism and Humanity. Every life has value. Calls on us to reflect deeply not only on awareness, but on acceptance, respect, and meaningful inclusion. So let us begin by understanding what autism is. Well, autism, also known as autism spectrum disorder or ASD, is a diverse group of conditions related to the development of the brain. The word spectrum is key. It highlights that autism is not a single uniform experience. Autistic individuals may experience differences in communication and social interaction, and some may find it difficult to interpret social cues or express themselves verbally. Others may display unique patterns of behavior, such as strong focus on specific interests, difficulty transitioning between activities, or heightened sensitivity to sounds, lights, or textures.
बिल्कुल अभिषेक, ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के सोचने, समझने, बोलने या दूसरों से जुड़ने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, और जो ऑटिस्टिक व्यक्ति होते हैं लोगों से बातचीत करने में हिचकते हैं या आई कॉन्टैक्ट करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, और कुछ दिक्कतें होती हैं, पर कई ऑटिस्टिक लोग ऐसे होते हैं जिनमें जबरदस्त खूबियां होती हैं, जैसे बारीकियों पर ध्यान देना, एकाग्रता, रचनात्मकता और नया सोचने की क्षमता। ये समझना जरूरी है कि सभी ऑटिस्टिक लोगों की क्षमताएं और जरूरतें अलग अलग होती हैं। ये जरूरतें तय नहीं होती, ये समय के साथ बदल सकती हैं। अगर एक आंकड़ा देखें तो 2021 में यह अनुमान लगाया गया था कि दुनिया भर में लगभग हर 127 लोगों में से एक व्यक्ति ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर होता है, जो अलग अलग स्तर पर दिखाई दे सकता है। हालांकि ये आंकड़ा एक औसत है और अलग अलग अध्ययनों और क्षेत्रों में असल संख्याएं काफी अलग हो सकती हैं। विकासशील दुनिया के कुछ हिस्सों सहित कई कम और मध्यम आय वाले देशों में भरोसेमंद डेटा अब भी सीमित है। इसका मतलब है कि अनगिनत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी बीमारी का पता ही ना चले या जिन्हें कोई सहारा ना मिले।
Absolutely, and autism characteristics can often be identified in early childhood. However, in many cases, diagnosis happens much later, sometimes in adolescence or even adulthood, due to lack of awareness, access to healthcare, or social stigma. Additionally, many autistic individuals experience co-occurring conditions such as epilepsy, anxiety, depression, or attention deficit hyperactivity disorder. And intellectual functioning can also vary widely from profound impairment to exceptional abilities.
अगर ये जाने कि ऑटिज्म किस वजह से होता है तो वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो ऑटिज्म है वो आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से हो सकता है। इनमें माता पिता की ज्यादा उम्र, गर्भावस्था के दौरान मां की सेहत से जुड़ी समस्याएं जैसे डायबिटीज, जन्म से पहले प्रदूषण या कुछ खास दवाओं के संपर्क में आना, समय से पहले जन्म या डिलीवरी के दौरान होने वाली जटिलताएं शामिल हो सकती हैं। हालांकि कोई एक अकेला कारक ऑटिज्म का कारण नहीं बनता, ये कई प्रभावों का एक जटिल मेल है जिसे शोधकर्ता अब भी पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं।
सो नाउ लेट्स एड्रेस वन ऑफ द मोस्ट परसिस्टेंट मीथ्स। एक्सटेंसिव रिसर्च कंडक्टेड ओवर मेनी इयर्स हैज क्लियरली शोन दैट वैक्सीन्स डू नॉट कॉज ऑटिज्म। द स्टडी दैट ओनली वंस सजेस्टेड अ लिंक वाज फाउंड टू बी फ्रॉडुलेंट, विथड्रॉन और डिसक्रेडिटेड, एंड द ऑथर लॉस्ट हिज मेडिकल लाइसेंस। एंड सब्सिक्वेंट रिसर्च हैज रिपीटेडली कन्फर्म्ड दैट वैक्सीन्स आर सेफ। Dispelling misinformation is essential not just for scientific accuracy but for protecting public health and ensuring trust.
और अगर देखें तो जो हर आंकड़ा होता है उसके पीछे एक मानवीय कहानी होती है। पिछले कुछ वर्षों में ऑटिज्म की दिशा में काम कर रहे लोगों ने वैश्विक चर्चाओं को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी अनुभवों को साझा करके उन्होंने जो रूढ़िवादी सोच है उनको चुनौती दी, सोचने के तरीकों को बदला है और अपने अधिकारों की पहचान की मांग की है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ऑटिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत हो, बल्कि ये दुनिया को अनुभव करने का एक अलग तरीका है, एक ऐसा तरीका जो समझ और सम्मान का हकदार है।
एंड फैमिलीज टू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड केयरिंग फॉर एन ऑटिस्टिक इंडिविजुअल कैन ब्रिंग बोथ जॉय एंड चैलेंजेस। द इमोशनल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल डिमांड्स कैन बी सिग्निफिकेंट, मेकिंग कम्युनिटी सपोर्ट एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट।
और अच्छी बात यह है कि जो ऑटिज्म से जुड़े लोगों को एक संतुष्ट और बेहतर जीवन जीने में मदद करने के तरीके मौजूद है। शुरुआत में किए गए प्रमाण आधारित मनोसामाजिक उपाय संचार, सामाजिक कौशल और समग्र जीवन स्तर को काफी बेहतर बना रहे हैं। ये उपाय और तरीके जितनी जल्दी शुरू किए जाएं उतने अधिक प्रभावी होते हैं, लेकिन ये पूरी जीवन भर उपयोगी बने रहते क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं और सरकार ने शुरू किए हैं, तो उससे बहुत फायदा मिल सकता है ऐसे बच्चों को।
एब्सोल्युटली, एंड रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन। वंस डायग्नोस्ड, इंडिविजुअल्स एंड द फैमिलीज शुड हैव एक्सेस टू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एप्रोप्रिएट सर्विसेज एंड ऑनगोइंग सपोर्ट टेलर्ड टू देयर नीड्स। Healthcare for autistic individuals often requires a holistic approach, one that includes not just medical care, but also education, employment opportunities, and social inclusion. Collaboration across sectors, health, education, employment, and social services is essential to ensure comprehensive support.
और देखा जाए तो असल में ये मानव अधिकारों का मामला है। ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के भी वही अधिकार हैं जो किसी और के हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और समाज में भागीदारी का अधिकार। फिर भी उनमें से कई लोगों को आज भी भेदभाव और अलगाव का सामना करना पड़ता है। अगर देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किया जा सकता है, शिक्षा व्यवस्था में नजरअंदाज करना या रोजगार के अवसरों से बाहर रखना। ये स्थिति निश्चित तौर पर बदलनी चाहिए और ये सभी के सहयोग से मुमकिन है।
Absolutely, so creating inclusive societies means removing barriers, physical, social, attitudinal, and it means designing environments that are accessible, supportive and welcoming to all. And the concept of neurodiversity teaches us the differences in brain function and natural variations of the human experience. When societies embrace neurodiversity, they become stronger. They benefit from diverse perspectives, enhance creativity and innovative thinking.
इस साल का विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है, जो इस बात पर जोर देता है कि समावेश किस तरह बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समानता, आर्थिक विकास, असमानताओं में कमी और टिकाऊ समुदायों के निर्माण में योगदान देता है। समावेश केवल एक नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि यह प्रगति का एक मार्ग भी है।
Yes, sir, Priyanka, so we have talked about the problems. So now what can each of us do? We can begin by educating ourselves and others. We can challenge harmful stereotypes and misinformation. We can advocate for inclusive policies in schools, workplaces and communities. And most importantly, we can listen to autistic voices, experiences and perspectives, because awareness alone is not enough. It must lead to acceptance, and acceptance must lead to action. So to conclude on this World Autism Awareness Day, let us reaffirm a simple but powerful truth. Every autistic life is valuable, every individual deserves dignity, and every voice deserves to be heard.
जब हम एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो विविधताओं का सम्मान करती है, तब हम एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो सच में हमारी साझा मानवता को दर्शाती है। अगली बार तक जागरूक रहें, संवेदनशील रहें और याद रखें, समावेशन की शुरुआत समझ से होती है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जुड़ने का। सबसे पहले चलते हैं अयोध्या। आज जी हां, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पर आज अयोध्या में धार्मिक श्रद्धा और भक्ति भावपूर्ण वातावरण में दक्षिण परंपरा पर आधारित काले राम मंदिर में हनुमान जी की जयंती मनाई गई और जानकी महल ट्रस्ट सहित अन्य मंदिरों में जयंती मनाई जा रही है। विशेष रूप से श्री राम जन्मभूमि परिसर में नवनिर्मित बजरंग बली की मूर्ति का ध्वजारोहण संपन्न किया गया, जिसमें बजरंग दल से संबंधित पूर्व पदाधिकारी आमंत्रित किए गए। प्रमुख रूप से बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जय भान सिंह, बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार सहित कई पूर्व पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हुए और जयंती के लिए हनुमान मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। हनुमान जयंती के कारण और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ले रहे हैं अपने अयोध्या संवाददाता तन्मय सोनी से।
हनुमान जयंती पर आज अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। ब्रह्मोत्सव से ही भक्तों ने पावन शैला सरयू में स्नान करके ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। अयोध्या के राजा के रूप में स्थापित हनुमान जी की जयंती पर आज मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेष रूप से दक्षिण परंपरा पर आधारित काले राम मंदिर में भगवान हनुमान जी का अभिषेक करके पूजा आरती की गई और नारदीय संकीर्तन के साथ ही एक भंडारे का आयोजन किया गया। इस मंदिर में काले कसौटी उत्कीर्ण हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है, जो कि भगवती का स्वरूप है, जिनके हाथ में गदा की जगह कटार मौजूद है। उनका यह स्वरूप अहिरावण वध के समय ही प्रत्यक्ष हुआ था। कहते हैं कि जब अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले गया था, तो वहां उनकी बलि चढ़ाना चाहता था। ऐसी मंशा के साथ ही देवी उपासना करके बलि चढ़ाने के पहले भगवान राम से कहा कि हम आपकी बलि चढ़ाना चाहते हैं, आप अपने इष्ट को याद कर लीजिए। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण ने हनुमान जी का स्मरण किया तो हनुमान जी सामने मौजूद देवी जी की प्रतिमा में ही प्रवेश करके प्रकट हो गए और अहिरावण का वध किया। तभी से आज के दिन अयोध्या के काले राम मंदिर, जानकी महल ट्रस्ट सहित प्रमुख मंदिरों, वाराणसी के संकट मोचन और राजस्थान प्रदेश के बालासार स्थित मेहंदी बालाजी मंदिर के साथ साथ संपूर्ण दक्षिण भारत के मंदिरों में हनुमान जयंती मनाई जाती है। परिक्रमा के लिए अयोध्या से तन्मय सोनी।
And from Ayodhya, now we turn attention to Bhopal, and I think there's a conference happening there tomorrow, Mahakal, the Master of Time, isn't it, Priyanka?
जी हाँ, और कल से शुरू होगी ये कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम, 5 अप्रैल तक चलेगी। और इस सम्मेलन में प्राचीन ज्ञान परंपरा और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के समन्वय पर मंथन होगा और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है जो उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। खास रिपोर्ट है अपने संवाददाता विपिन मिश्रा की, आइए सुनते हैं।
मध्य प्रदेश के उज्जैन के समीप डोंगला में कल से 5 अप्रैल तक आयोजित होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम, जो देश विदेश के वैज्ञानिकों, खगोलविदों, शिक्षाविदों और शोधार्थियों को एक मंच पर लाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन उज्जैन स्थित तारामंडल परिसर में होगा, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। यह सम्मेलन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के समन्वय पर केंद्रित होगा। इसमें स्पेस इकोनॉमी, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, भारतीय काल गणना पद्धति और स्पेस सेंटर से जुड़ी रणनीतियों जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान साइंस सेंटर का उद्घाटन भी किया जाएगा, साथ ही यूवी रिमोट कंट्रोल तकनीक और सैटेलाइट निर्माण पर कार्यशाला आयोजित की जाएंगी, जो युवाओं में विज्ञान और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाएगी। उज्जैन से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित डोंगला का ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। कर्क रेखा के यहां से गुजरने के कारण इसे काल गणना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। सम्मेलन में उज्जैन डोंगला को वैश्विक टाइम स्केल सेंटर के रूप में स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी। यह सम्मेलन न केवल उज्जैन की प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा, बल्कि मध्य प्रदेश को अंतरिक्ष विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
यहाँ राम नगरी के बाद महाकाल की नगरी, और अब उसके बाद हम कहाँ का रुख कर रहे हैं अभिषेक?
यस, द सैंड बीचेस ऑफ गोवा बेकन्स। एंड गोवा डेवलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन, अर्निंग ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर सर्विस एक्सीलेंस। वी हैव मोर डिटेल्स फ्रॉम अपनाजी टीम।
The Dabolim Airport has won the prestigious Airport Service Quality Award, presented by Airports Council International. Among airports, under the Airports Authority of India, Dabolim secured the second rank nationally. At the global level, the airport achieved the 59th position, marking a strong international presence. The ranking are based on passenger feedback covering service quality, staff behavior, cleanliness, and overall travel experience. Airport Director Akashdeep credited the achievement to teamwork between airport staff, airline partners and stakeholders. He said the focus now is on improving digital infrastructure and aiming for a top global ranking. The recognition is expected to boost Goa's tourism appeal and attract more international travelers. For Parikrama, Brian Fernandez, Panaji.
अभिषेक, वाराणसी में 31 मार्च को एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ, और सम्मेलन के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच निवेश, कौशल विकास, हस्तशिल्प और बाजार विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल धाम के बीच व्यवस्थाओं के आदान प्रदान के लिए समझौता भी हुआ। इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता प्रेमचंद गुप्ता से।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर सुशासन, सांस्कृतिक समन्वय और आध्यात्मिक पर्यटन की नई इबारत लिखेंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल धाम के बीच व्यवस्थाओं के आदान प्रदान के लिए एमओयू किया गया। इससे धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन में सहायता मिलेगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP को लेकर भी एक MOU किया गया है। यह MOU स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दृष्टि से किया गया है। सम्मेलन में दोनों राज्यों के ODOP उत्पादों का भी आदान प्रदान किया गया। इस अवसर पर दोनों राज्यों से संबद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कौशल को दर्शाती हुई GI एवं ODOP उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। वाराणसी से मनीष सिंह के साथ परिक्रमा के लिए आकाशवाणी गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
और अब चलते हैं खेल के मैदान में, और आज जानते हैं वहां की हलचल।
एंड वी स्टार्ट ऑफ विद IPL क्रिकेट। एंड इन IPL क्रिकेट, होस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स विल टेक ऑन सनराइजर्स हैदराबाद इन ईडन गार्डन्स दिस इवनिंग, एंड द मैच विल बिगिन एट 7:30 PM। लास्ट नाइट दिल्ली कैपिटल्स डिफीटेड होस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स बाय 6 wickets। एंड नाउ मूविंग ऑन टू सम बिजनेस न्यूज, बेंचमार्क डोमेस्टिक एक्विटी इंडिसेस रोज अराउंड 0.2% टुडे। द सेंसेक्स एडवांस्ड 185 पॉइंट्स टू क्लोज एट 73,320, while Nifty added 34 points to settle at 22,713. However, in the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 fell nearly 0.3%, while the small-cap 100 closed about 0.4% lower. Earlier markets opened with a gap down amid negative Asian cues, But the indices eased the losses as the session progressed and turned positive in the final hour of trade. And for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
On the 2nd of April 1870, Pune Sarvajanik Sabha was founded. Pune Sarvajanik Sabha was a socio-political organization which was started with the aim of working as a mediating body between the government and the people of India and to popularize the legal rights of the Indians.
It was formed in 1867 by Mahadev Govind Ranade, Bhavan Rao, Srinivas Rao, Pant Pratinidhi, Ganesh Vasudev Joshi and S.H. Chiplunkar. Other important members of the Sabha included M.M. Kunte, Vishnu M. Bhide, Bal Gangadhar Tilak, and Gopal Hari Deshmukh.
The Sarvajanik Sabha was an organization which was representative of the people of the region. So, its first 95 members were elected from among 6,000 people. The members were mostly from the educated middle class of the society and consisted of lawyers, teachers, journalists and government servants. Even though the members were mostly from the upper middle classes, the membership was open to people of all castes and classes.
Sarvajanik Sabha was meant to serve as a link between the government and the people. The organization organized lecture tours and meetings and tried to foster national pride among the people. It also organized relief work during famines.
The Sabha even encouraged Swadeshi and sent its member Ganesh Vasudev Joshi to the Delhi Darbar of 1877 in handspun khadi attire. At the Darbar, Joshi read out a citation demanding Her Majesty to grant to India the same political and social status as is enjoyed by her British subjects.
The Pune Sarvajanik Sabha provided many of the prominent leaders of the national stature to the Indian freedom struggle, including Bal Gangadhar Tilak. It served as one of the pioneer political organizations before the formation of the Indian National Congress in 1885.
Also, on the 2nd of April 1942, Cripps' proposal was rejected by the Congress. On the 22nd of March 1942, a mission headed by Stafford Cripps was sent to India with constitutional proposals to seek Indian support for the Second World War.
Because of the defeat of Britain in Southeast Asia, the Japanese threat to invade India seemed real now, and Indian support became crucial. There was pressure on Britain from the Allied nations to seek Indian cooperation. Indian nationalists had agreed to support the British on a condition that substantial power was transferred immediately and complete independence would be given after the Second World War.
The main proposals of the cabinet mission were an Indian Union with the Dominion status would be set up. After the end of the war, a constituent assembly would be convened to frame a new constitution. All members would be Indians.
The British government also put a clause that it would accept the new constitution subject to a condition that any province not willing to join the union could have a separate constitution and form a separate union.
Muslim League criticized the idea of a single Indian union. The Congress objected to the offer of dominion status instead of a provision for complete independence. The nationalist leaders also rejected the idea of rights to provinces to secede, as this went against the principle of national unity. The other groups also objected to the provinces' right to secede.
This breakdown of talks led to the launch of the Quit India movement, which served as the final nail in the coffin of the British Empire in India.
आगे बढ़ते हैं। سدھی ہوئی اور دل کو چھو جانے والی آواز کے مالک استاد بڑے غلام علی خان کی آج جینتی ہے. انہوں نے نویلی شیلی کے ذریعے ٹھمری کو نئی آب اور تاب دی. انہوں نے ریاض کے ذریعے ٹھمری اور خیال کی شیلی میں کئی ابھینو پریوگ کیے اور سنگیت کو نئی ودھاؤں سے نوازا. پشچمی پنجاب کے قصور میں سال 1902 میں جنمے بڑے غلام علی خان پٹیالہ گھرانے کے تھے, لیکن انہوں نے اپنے سنگیت کو کبھی ایک گھرانے کی سیماؤں میں قید نہیں رکھا. بڑے غلام علی خان نے 1938 میں تتکالین کلکتہ میں کارکرم میں دنیا کے سامنے پہلی بار اپنی آواز کا جادو بکھیرا تھا. اس کے بعد وہ سنگیت کو آگے بڑھانے اور اسے سمردھ کرنے کی مہم میں رم گئے. دلچسپ ہے کہ سنگیت کی دنیا میں ان کی شروعات سارنگی وادک کے روپ میں ہوئی. اور دکھنے میں بہت کڑک مزاج اور مضبوط ڈیل ڈال والے بڑے غلام علی خان نے سبرنگ نام سے کئی بندشیں رچیں. ان کی سرگم کا انداز بالکل نرالا تھا. ان کی آواز آج بھی منتر مگدھ کر دیتی ہے. آپ نے کا کرو سجنی کئی آواز میں سنا ہوگا, بڑے غلام علی خان نے کیسے سے گایا تھا آپ کو سناتے ہیں.
یاد کیا کی جائے یہ دکھ سا نہ جائے, ہے یاد کیا کی آئے.
انہیں 1962 میں پدم بھوشن سے النکرت کیا گیا تھا.
Yes, and we are also remembering C.S. Forrester, who passed away on this day in 1966. He was an English novelist known for writing tales of naval warfare, such as the 12-book Horatio Hornblower series, depicting a Royal Navy officer during the Napoleonic Wars, and the Hornblower novels, A Ship of the Line and The Flying Colors, were jointly awarded the 1938 James Tait Black Memorial Prize for Fiction. Other works include The African Queen and The Good Shepherd, both of which were later adapted as movies.
اور آج ہی کے دن جنم ہوا تھا ہریندر ناتھ چٹوپادھیائے کا. بہت ہی پرتیبھاوان ہستی رہے. انہوں نے انگریزی اور ہندی دونوں میں کویتائیں رچی. وہ بھارت کی کوکلا سروجنی نائیڈو کے چھوٹے بھائی تھے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ فلموں میں ابھینے کیا اور انہیں سنگیت میں بھی رچی تھی. اگر ان کی ہندی کی کویتاؤں کی بات کریں تو انہوں نے بچوں کے لیے بہت ہی عمدہ کویتائیں لکھی, جیسے تاتی تاتی توتا, پنجرے میں سوتا, کاہے کو تو روتا, اندھکار چھوڑ دے, پنجرے کو توڑ دے. ساہتیہ اور شکشا میں ان کے یوگدان کے لیے انہیں 1973 میں پدم بھوشن سے سمانت کیا گیا تھا. اور انہوں نے کئی فلموں میں بھی ابھینے کیا اور آشیرواد فلم میں بچوں کے لیے گیت ریل گاڑی ان کا ہی لکھا تھا.
ریل گاڑی چھک 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 بیچ والے اسٹیشن بولے رک 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 رک
Yes, and we're also remembering Emmylou Harris, who was born on this day in 1947. She's an American singer, songwriter, musician, bandleader and activist. She's considered one of the leading music artists behind the country rock genre in the 1970s and the Americana genre in the 1990s. Her music united both country and rock audiences in live performance settings. Let's listen in to one of her hit tracks. And we're also remembering Hans Christian Andersen, who was born on this day in 1805. He was a Danish author. Although a prolific writer of plays, travelogues, novels and poems, he is best remembered for his literary fairy tales. And Andersen's fairy tales, consisting of 156 stories across 9 volumes, have been translated into more than 125 languages.
اور آج جنم دن ہے جانے مانے ابھینیتا اجے دیوگن کا. اپنی کریئر کی شروعات سال 1991 میں آئی فلم پھول اور کانٹے سے کی تھی, اور اس فلم سے ڈیبیو کرتے ہی وہ راتوں رات سٹار بن گئے تھے.
Yes, and he has appeared in over 100 films and has won numerous accolades, including 4 National Film Awards and 4 Filmfare Awards. And in 2016, he was honored by the government of India with the Padma Shri, the country's 4th highest civilian honor. Let's go ahead and listen to a dialogue from one of his hit movies.
Shabdon pe nahi, drishyo pe dhyan do. Kyunki shabdon mein jhoot chupne ki jagah dhoondi leta hai. Lekin drishyo, drishyo kabhi jhoot nahi bolte. اس لیے سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا ہے, سوال یہ ہے کہ آپ دیکھ کیا رہے ہو.
जी हाँ, अजय देवगन की दृश्यम फिल्म का ये डायलॉग था और उन्होंने अपने करियर में हर तरह के रोल निभाए, फिर वो चाहे एक्शन हो, कॉमेडी हो, थ्रिलर हो या संजीदगी वाले रोल, और उन्होंने हर तरह के रोल में खुद को साबित भी किया। फिल्म जख्म के लिए उन्हें पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था और जाते जाते उन पर फिल्माया गया ये गीत भी सुनते चलते हैं।
राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई।
जी हाँ, मुलाकात का समय खत्म हो गया है। समय कह रहा है आपसे अनुमति लेने का। प्रियंका अरोड़ा और अभिषेक मुखोपाध्याय को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार, नमस्कार।